नमस्कार भारत, 7 अगस्त मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका ने ईरान पर फिर लगाए कड़े आर्थिक प्रतिबंध, जानेंगे बाकी दुनिया पर भी इन प्रतिबंधों का कैसे पड़ेगा असर।
इंडिया की कंपनी अगर ईरान के साथ ट्रेड करती है तो उसके ऊपर भी सैंक्शन से, यानी वो कंपनी फिर अमेरिका में कोई बिजनेस नहीं कर सकती।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाल गृह में बच्चियों के कथित यौन शोषण को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।
योगी जी कहते हैं कि ठोस कार्रवाई करेंगे, तो इससे पहले क्या पिलपिली कार्रवाई कर रहे थे क्या? हमारी मांग है कि सबसे पहले योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए।
कहानियां चीन की श्रृंखला की अगली कड़ी में, बात शंघाई की, जहां बच्चों की शादी करवाने के लिए पार्क में जुटते हैं माता पिता। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। अमेरिका ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से हटने के बाद फिर से लगाए प्रतिबंधों को लागू करने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही ईरान के ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ उसके सोने और कीमती धातुओं में व्यापार पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान नए समझौते के लिए राजी हो जाएगा और अपनी नुकसानदेह गतिविधियां रोक देगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस कदम को मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिया है। सऊदी अरब और कनाडा में चल रहे टकराव के बीच सऊदी अरब ने कनाडा के शहर टोरंटो से हवाई संपर्क निलंबित कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरब ने रियाद में कनाडाई उच्चायुक्त को वापस देश भेज दिया था और टोरंटो में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। सऊदी अरब ने यह कदम कनाडा की उस अपील के बाद उठाया है जिसमें रियाद में गिरफ्तार किए गए नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गई थी, लेकिन सऊदी अरब ने इसे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। सऊदी की विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा है कि देश उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं इस मामले पर कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि हम लगातार महिला अधिकारों का समर्थन करते आए हैं और आगे भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों का समर्थन करती रही है और हम ये मसला सऊदी अरब में भी उठाते रहे हैं। यह ऐसा मामला है जो हम कनाडा और पूरे विश्व में उठाते रहेंगे। ये थे कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के शब्द। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कल शाम 6:30 बजे मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है और उम्र के कारण उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को काम करने लायक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उनकी सेहत के लिए आज शाम तक का समय काफी अहम है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर ड्रोन हमला कराने के आरोप को कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सेंटोस ने खारिज किया है। खुआन मैनुअल सेंटोस का कहना है कि वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर किए गए हमले का मास्टरमाइंड होने के आरोपों से इंकार करते हैं। उन्होंने कहा, कल मुझे एक और अजीब बात पता चली कि मैंने अमरीकी इंटेलिजेंस और वेनेजुएला के दक्षिण पंथियों के साथ मिलकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मारने की योजना बनाई थी। ईश्वर साक्षी है कि मैं उस दिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम कर रहा था। मैं अपनी पोती के नामकरण में था। ये थे कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सेंटोस के शब्द। निकोलस मदुरो पर राजधानी काराकस में कार्यक्रम के दौरान विस्फोटकों से भरे ड्रोन ने हमला कर दिया था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। निकारागुआ में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख संस्था ने उसके कर्मचारियों को मिल रही जानलेवा धमकियों के चलते काम बंद कर दिया है। उन्हें ये धमकियां सरकार समर्थक लड़ाकों से मिल रही थीं। देश में 4 महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस संस्था के प्रमुख सहित अन्य स्टाफ पड़ोसी देश कोस्टारिका में चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें निकारागुआ में जान का खतरा है। वहीं निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने इस हिंसा के लिए दक्षिण पंथी समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के बेहद खतरनाक स्तर पर खड़ी है। हम जल्द ही उस सीमा को लांघ सकते हैं जिसके बाद धरती सिर्फ आग से तप रही होगी और चारों तरफ विशाल समुद्र होगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। अब से कुछ ही देर में भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से ईरान पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ये वही प्रतिबंध हैं जो साल 2015 में ईरान से परमाणु समझौता होने पर हटा लिए गए थे, मगर अब ये प्रतिबंध एक बार फिर लागू होने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान नए समझौते के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमरीका की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से हटने के बाद फिर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों को पूरी तरह बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि दुनिया के सभी देश ईरान के साथ व्यापार बंद करें ताकि वह अपना धमकी भरा व्यवहार छोड़े। इन प्रतिबंधों के लागू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अमेरिका से फॉक्स न्यूज चैनल पर कहा कि ईरान के पास अब भी विकल्प है। वे राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करके बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को छोड़ सकते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा और क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां भी बंद करनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार यूरोप के नेताओं से इस बारे में बात की है। अगर ईरान गंभीर है तो उसे वार्ता करनी चाहिए। ये थे अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के शब्द। मगर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी अमेरिका से अभी किसी भी तरह की बातचीत के पक्ष में नहीं है। ईरान के सरकारी चैनल पर देशवासियों को संबोधित करते हुए रूहानी ने कहा कि हम कूटनीति और वार्ता के हमेशा से पक्ष में हैं, मगर बातचीत के लिए ईमानदारी की जरूरत है। समस्या को सुलझाने और समझौता करने के लिए उन्हें यह दिखाना होगा कि वह वास्तव में वार्ता करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं और फिर वार्ता के लिए भी बुला रहे हैं। ये तो ठीक वैसा है कि आप अपने दुश्मन या प्रतिद्वंदी पर चाकू घोंपें और फिर कहें कि आओ बातचीत करके समझौता कर लेते हैं। ऐसे में जवाब यही होगा कि पहले चाकू को तो दूर रखिए, वार्ता के लिए तार्किक बातें करना जरूरी है। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान की विवादित परमाणु गतिविधियों को रोकने की कोशिश की गई थी। यह समझौता उस समय हुआ था जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मगर ट्रंप का मानना है कि यह बेहद भयंकर और एक तरफा समझौता था। इस समझौते में शामिल रहे रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमरीका के ताजा कदम पर गहरा अफसोस जताया है। उन्होंने समझौते के तहत ईरान से किए गए वादों को निभाने की प्रतिबद्धता जताई है। ईरान ने कहा है कि अगर उसे आर्थिक लाभ मिलते रहेंगे तो वह भी वादों को निभाता रहेगा।
ईरान पर अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी। कुछ देर पहले मैंने बात की अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान से और उनसे जानना चाहा कि आखिर ये किस तरह के प्रतिबंध हैं और क्या ईरान के साथ साथ बाकी देशों जैसे कि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा या नहीं।
देखिए, जो ईरान के खिलाफ दो किस्म के सैंक्शंस है अमेरिका की तरफ से, एक सैंक्शंस वो है कि अमेरिका के जो करेंसी है डॉलर वो ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने ट्रेड ट्रांजैक्शंस में और खास तौर से ऑयल के ट्रांजैक्शन में वो डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज वगैरह, कारपेट, ये जो ट्रेड होता है वो सारा का सारा बंद कर दिया था। और फिर दूसरा सेकेंडरी सैंक्शंस थे जो मिसाल के तौर पर अगर कोई इंडिया की कंपनी अगर ईरान के साथ ट्रेड करती है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस थे, यानी वो कंपनी फिर अमेरिका में कोई बिजनेस नहीं कर सकती और अगर उसके एसेट्स अमेरिका के पास हो तो वो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये दो किस्म के सैंक्शंस थे। तो 2015 में जब 6 मुल्कों के साथ माहदा हुआ और न्यूक्लियर डील हुई तो ये सारे के सारे सैंक्शन सस्पेंड कर दिए गए थे अमेरिका की तरफ से और दूसरे मुल्कों ने तो हटा भी दिए थे। तो अमेरिका में जो सिस्टम था कि हर 6 महीने को अमेरिका के प्रेसिडेंट रेटिफाई करते थे कि ईरान जो न्यूक्लियर डील है उसके मुताबिक चल रहा है और वो सैंक्शन फिर मजीद 6 महीने के लिए सस्पेंड किए जाते थे। लेकिन इस बार मई में ट्रंप ने अनाउंस किया कि हालांकि ईरान सैंक्शन जो डील है उस पर चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो सैंक्शन रिवोक कर देंगे और जो प्राइमरी सैंक्शन है वो आज से लागू हो गए। यानी अब ईरान अमेरिका के पास से हवाई जहाज नहीं खरीद सकता, अमेरिका में कोई ईरान के पिस्टैशियोज या कारपेट्स नहीं खरीद सकते। तो ये सब अमेरिकन कंपनीज पे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए ट्रेड। और नवंबर में फिर वो दूसरे मुल्कों के कंपनीज जो ईरान के साथ अभी भी ट्रेड कर रहे होंगे उन पे भी सैंक्शंस लागू हो जाएंगे।
जिस तरह के प्रतिबंध है, जाहिर है इससे ईरान पर काफी दबाव बनेगा, उस पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे देशों के अलग अलग तरह के व्यापार होते हैं ईरान के साथ, वो भी प्रभावित होंगे। क्या उन देशों की आपत्ति को भी नजरअंदाज कर रहा है अमेरिका?
देखिए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, अगर अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप मोटरसाइकिल बनाते हैं, अगर आप ईरान में 100 मोटरसाइकिल बेच रहे हैं तो अमेरिका में आप हजारों बेच रहे हैं, तो अगर आप 100 मोटरसाइकिल के खातिर ये हजारों की मार्केट क्यों गंवा देंगे।
आप सुन रहे थे प्रोफेसर मुख्तदर खान को, जो कि बता रहे थे कि प्रतिबंध बेशक ईरान पर लगे हैं लेकिन इनका प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब रुख करते हैं भारत का। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बाल गृह में बच्चियों के साथ हो रहे कथित यौन शोषण मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम को हटा दिया है और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। बाल गृह चलाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनिए देवरिया से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
देवरिया जिले में बालिका गृह की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक ओर ये मामला सियासी गलियारों की सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी इस मुद्दे पर संवेदनशील और सख्त नजर आ रही है। घटना के सामने आने के तत्काल बाद राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।
वो एक वर्ष से वहां पर डीएम है और लगातार उनको लिखकर भेजा जा रहा था कि अनाधिकृत रूप से ये बाल गृह चल रहा है, महिला आश्रय गृह चल रहा है, इसको आप बंद करिए, परंतु उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उनको तत्काल हटा दिया है। पूर्व डीपीओ अभिषेक पांडे, इनको सस्पेंड किया गया क्योंकि 6 महीने ये थे और जो इंटरिम चार्ज में थे उन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इन मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 2 सदस्यीय जांच कमेटी, हाई लेवल कमेटी भेजी है और ये लोग चॉपर से भेजी गई हैं, हेलीकॉप्टर से भेजी गई हैं।
यही नहीं, इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से 12 घंटे के भीतर महिला और बाल संरक्षण गृहों की जांच रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। देवरिया जिले के इस बाल गृह में 42 लड़कियां थी। पुलिस को घटना की जानकारी एक 10 साल की लड़की ने दी, जिसके बाद बाल गृह में छापा मारा गया। देवरिया के पुलिस अधीक्षक रोहन पी कने ने बताया,
एक लड़की ने उस बालिका गृह में ये 3 साल से नौकर की तरह काम कर रही थी, इनके ऊपर जुल्म हो रहा था। इसमें कुछ ऐसे कहानी निकल के आई जहां पे इसने बताया कि जो लड़कियां 15 से 18 साल की हो जाती है उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है और वो उनको लेने के लिए गाड़ियां आती है और बाहर चली जाती हैं और सुबह देर सुबह में आती है और रोते हुए आती हैं। छापे मारी मारी और करीब 24 बच्चों को रिहा करवाया, अभी और भी 10-15 बच्चों का पता नहीं चल रहा कहाँ है।
पुलिस के मुताबिक इस बालगृह को तमाम अनियमितताएं पाए जाने के चलते 1 साल पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया था, बावजूद इसके इसका संचालन किया जा रहा था। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है, विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला तो आज देवरिया में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है।
घिनौनी घटना है और जहां जहां बीजेपी का राज है वहां पर ये जड़ा बहुत ही ये फल फूल रही, चाहे वो बिहार में मुजफ्फरपुर रहा हो, चाहे देवरिया उत्तर प्रदेश में, जो मात्र योगी जी के घर से जो 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। योगी जी कहते हैं कि ठोस कार्रवाई करेंगे, तो इससे पहले क्या पिलपिली कार्रवाई कर रहे थे क्या, जो आज ठोस कार्रवाई करेंगे? हमारी मांग है कि सबसे पहले योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए।
सरकार ने अपर मुख्य सचिव और एडीजी महिला सुरक्षा को तत्काल जांच के लिए सोमवार को ही भेज दिया था। दोनों अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट आज सरकार को सौंप देंगे। सरकार ने रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं, लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बना है कि बालगृह से जो 18 लड़कियां गायब हैं वो हैं कहां। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी देवरिया।
कल छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा में 15 माओवादियों के मारे जाने के बाद फिर से ये कहा जाने लगा है कि राज्य में माओवाद खत्म होने की ओर है। अभी तक माओवादियों से बातचीत का रास्ता खुला रखने का दावा करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी आर या पार की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। राज्य के नक्सल ऑपरेशन के पुलिस महानिदेशक अपनी लड़ाई को निर्णायक बता रहे हैं। राज्य में क्या है माओवादी हिंसा के हालात, बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पिछले साल भर से सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा करते रहे हैं कि 2022 तक छत्तीसगढ़ से माओवादियों को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि इस तरह की सरकारी घोषणा पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 2014 और फिर 2017 में भी यह मियाद तय की गई थी, लेकिन माओवादी हिंसा में कमी नहीं आई। लेकिन पिछले पखवाड़े भर में अलग अलग घटनाओं में 28 माओवादियों के मारे जाने के बाद सरकार विजय मुद्रा में है और अब तक माओवादियों के साथ बातचीत की बात करने वाले मुख्यमंत्री रमन सिंह भी कहने लगे हैं कि अब बीच का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। माओवादी या तो समर्पण करें या सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के लिए तैयार हो जाएं। मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों पर इस बात को दोहरा रहे हैं।
नक्सलियों के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, या तो सरेंडर करें या मूलधारा में आ जाएं, सामान्य नागरिक बने, या फिर पुलिस बल तैयार है। अब नक्सलियों को बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
पिछले 7 महीनों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग मुठभेड़ों में 86 संदिग्ध माओवादी मारे गए हैं। इसके अलावा 670 संदिग्ध माओवादियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राज्य में नक्सल ऑपरेशन के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने माओवादियों को खत्म करने की जो मियाद तय की है, सुरक्षा बल उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 2022 का और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो हमारे पुलिस अधीक्षक चला रहे हैं और जो उत्साह के साथ और इंटेलिजेंस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ये स्थिति बनी रहती है तो वास्तव में 2022 तक हम अच्छी मजबूत स्थिति में होंगे और हो सकता है कि नक्सलवाद समाप्त भी हो जाए।
तो क्या छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ ताजा लड़ाई निर्णायक दौर में है? यही सवाल हमने वरिष्ठ पत्रकार और माओवादी मामलों के जानकार रुचिर गर्ग से पूछा।
माओवादियों के खिलाफ लगभग हर राज्य में सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां तेज हैं। सुरक्षा बल जंगलों में काफी भीतर तक घुसकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का हौसला बढ़ा हुआ है और उसे लगता है कि वो बहुत जल्दी माओवादी हिंसा से निपट लेगी।
तो क्या यह मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में अब माओवादियों और सरकार के बीच किसी शांति वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं बची है?
दोनों पक्षों की ओर से बातचीत की बात तभी उठती है जब किसी एक पक्ष को इस बात की जरूरत लगती है। कभी भी जब किसी एक पक्ष का पलड़ा भारी होता है तो वो बातचीत जैसे रास्ते को नहीं चुनना चाहता।
फिलहाल पिछले 3 दिनों से सुकमा में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को और तेज करने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि बस्तर में होने वाली भारी बारिश के कारण आम तौर पर माओवादियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाला बरसात का मौसम इस बार माओवादियों पर और भारी पड़ेगा। आलोक पुतुल, BBC, छत्तीसगढ़।
कल शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरके धवन का 81 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। पूर्व राज्यसभा सांसद आरके धवन भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की करीबी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत इंदिरा गांधी के निजी सचिव के तौर पर की थी। आरके धवन इंदिरा के साथ साल 1962 से लेकर 1984 में उनकी मौत तक साथ रहे। आरके धवन को लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से बात की और पूछा कि उन्हें आगे कैसे याद रखा जाएगा।
एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत थी जो सत्ता के इर्द गिर्द उन्होंने एक लंबी पारी खेली। बहुत कुछ लोगों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहे, राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव के दौर देखे, संकट के साथी रहे और राजनीति में बहुत सी जो गलत चीजें आई जो कांग्रेस के राज में, उसका कहीं ना कहीं उसमें आरके धवन का भी योगदान था।
इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे और उस हैसियत से बहुत करीब रहे, उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, उनमें निष्ठा बहुत थी इंदिरा गांधी के लिए, इंदिरा गांधी के प्रति वफादार रहे, लेकिन वो उनके मन में भी सिर्फ एक वो सहयोगी नहीं थे, उन्हें एक राजनीति में अमल दखल का बड़ा उनको शौक था। उन्होंने संजय गांधी में ये देखा कि संजय गांधी को अगर वो बढ़ाएं चढ़ाएं तो उनका उससे राजनीतिक लाभ हो सकता है। देखिए, इंदिरा गांधी को शुरू में संजय गांधी को वो सियासत में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आरके धवन ने संजय गांधी का का साथ दिया और उनको बहुत ज्यादा बढ़ाया, और इंदिरा गांधी को दूसरी तरफ इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि संजय गांधी जो है वो एक उनके अच्छे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, एक वो एक देश के लिए एक अच्छे नेता होंगे, तमाम चीजें उन्होंने करी। राज्यों में जो था, जो कांग्रेस शासन के जो राज्य थे वहां धवन की बड़ी पकड़ रहती थी, मुख्यमंत्रियों को जो हाईकमान कांग्रेस में कहलाता है, मतलब प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष जो उमूमन उस जमाने में एक ही शख्स होता था, वो एक गेटकीपर थे, उनके बिना जो था परिंदा पर नहीं मार सकता था कोई, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, धवन के बिना मिलना संभव नहीं था।
सिर्फ एक कांग्रेस के वफादार के रूप में याद किए जाएंगे आरके धवन?
धवन मेरे ख्याल से धवन के एक बहुत सारे लोग कांग्रेस जन उनके बड़े गुण बताएंगे, लेकिन राजनीति में जो एक जो जो नेहरू की जो सोच थी, जो एक नियत और नीति की बात होती थी कि साफ सुथरी बातें, वो सब उसमें धवन जो थे काफी कमजोर साबित हुए। उन्होंने कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोगों को प्रमोट किया जो 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 उन्हें पद और पोजीशन मिली वो डिजर्व नहीं करते थे, और पूरा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और बाद में थोड़ा बहुत सोनिया गांधी को भी उन्होंने जो था ये अपनी सब राजनीति से जो है इन्फ्लुएंस किया, फैसले लेने में वो करा, वो बड़े लॉयल थे। मैं एक किस्सा बताता हूँ कि जब जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनके विदेशी मूल का मामला जो था, जब इन लोगों ने उठाया, संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर ने, तो उस समय पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसमें प्रणब मुखर्जी और बहुत से लोग मौजूद थे, वो एकदम से कुछ कह नहीं पाए, वो बिल्कुल एक सकपका गए, और धवन ही सबसे पहले खड़े हुए और धवन ने कहा कि संगमा को कि आप क्या बात कह रहे हैं, शरद पवार को उन्होंने टोका। तो उससे सोनिया गांधी बहुत प्रभावित हुई कि उस सभा में जब उनकी एक तरीके से बेइज्जती हो रही थी, उस समय कोई भी कांग्रेस जन जो बड़े बड़े लोग थे जिसे हम व्हाइट कॉलर कहते हैं, बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग, जितेंद्र प्रसाद और तमाम लोग, वो कोई भी नहीं बोला, और आर के धवन ने उनको जो था उनका साथ दिया। तो इस तरह से कांग्रेस परिवार में जो है धवन का बड़ा मान सम्मान था और रहेगा।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। कमलेश काफी देर से अखबारों को उलट पलट रही हैं, क्या कहते हैं आज से, आज दिल्ली से छपने वाले अखबार?
आदर्श, हम हिंदुस्तान टाइम्स हमारे सामने है, हम देखें तो उसमें पहले पन्ने पर डेंगू के खतरे की चेतावनी दी गई है कि बारिश का मौसम है, खतरा भी बढ़ रहा है, और दिल्ली सरकार ने इसके लिए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है
जी।
इसके अलावा द हिंदू में खबर है पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई, जिन्हें हम जानते हैं, जो बहुत चर्चित रही हैं, वो अपने पद को छोड़ने वाली हैं कुछ ही महीनों में। वो 12 साल इस पद पर रही हैं और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी बनकर उभरी हैं
जी। एक नजर मेरी अभी हिंदुस्तान पर पड़ी है, हिंदुस्तान अखबार में पहले पन्ने पे खबर छपी है कि ईवीएम को आधार से जोड़ने की तैयारी, और इसमें लिखा है कि राजनीतिक दल जो है वो ईवीएम के विरोध से, इतर चुनाव आयोग जो राजनीतिक दल है वो विरोध करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो आधार से ईवीएम को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आयोग का ये मानना है कि इससे मतदाता की पहचान का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है
जी। और हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस है, इसके पहले पन्ने पर जस्टिस केएम जोसेफ से जुड़ी खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो नियुक्ति होने वाले हैं और विवादों में हैं लंबे समय से। अभी विवाद का एक कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके वरिष्ठता क्रम में उन्हें तीसरे स्थान पर रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने इसको लेकर दीपक मिश्रा के सामने मसला उठाया है, अपना विरोध जाहिर किया है
जी।
और जनसत्ता में देखें तो यहाँ इसमें खबर है कि बच्चियों के बलात्कार पर, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार पर फांसी के प्रावधान वाले बिल को संसद में मंजूरी मिल गई है। सोमवार को इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था, और इस बिल के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की जो किशोरियां होंगी उनको कठोर सजा मिलेगी, और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के अपराधियों को
जी
जो है फांसी की सजा मिलेगी,
यानी उनकी अपराधियों को जो आपने जिक्र किया।
हाँ जी, अपराधियों को। और नवभारत टाइम्स में खबर है कि दूरसंचार विभाग ने उद्योग से पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर अगर खतरे की स्थिति आ जाती है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप को किस तरह ब्लॉक किया जा सकता है। ये मसला, सुरक्षा का मसला, एक लंबे समय से उठ रहा है, तो इसी संबंध में ये भी पूछा गया है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश। बात करते हैं चीन की, जहां पे लड़कियां जैसे जैसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं वैसे वैसे उन्हें अपने लिए पसंद का जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। चीनी मीडिया में प्रकाशित एक आंकड़े के मुताबिक 2020 तक यहां करीब 2.5 करोड़ कुंवारे मर्द होंगे। बच्चों की शादी में देरी से चिंतित कई माँ बाप हर सप्ताहांत शंघाई के एक पार्क में इकट्ठा होते हैं, जहां पहुंचकर बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने शादी को लेकर चिंतित कुछ लोगों से बातचीत की।
में एक पार्क है जहां साल 2005 से हर हफ्ते शादी का बाजार सजता है। जब हम पार्क पहुंचे तो वहां रुक रुक कर बारिश हो रही थी। छातों के ऊपर पन्नियों से लिपटे कागज रखे थे जो दरअसल शादी के बायोडेटा थे। इसमें दर्ज थे लड़के और लड़कियों की उम्र, तनख्वाह और उनकी राशि। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 तक चीन में कुंवारी लड़कियों के मुकाबले 3 करोड़ ज्यादा कुंवारे लड़के होंगे। चीन में महंगाई बढ़ रही है और लड़के और लड़कियों की अपने पार्टनर्स को लेकर उम्मीदें भी। इसलिए या तो वो देर से शादी कर रहे हैं या शादी ही नहीं कर रहे हैं या फिर शादी को लेकर उनकी धारणाएं बदल रही हैं। लेकिन भारत की तरह चीन में भी बच्चे शादी न करें या देरी से करें तो कई माँ बाप रिश्तेदार परेशान हो उठते हैं। पार्क में हमारी मुलाकात ग्रेस से हुई। ग्रेस ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और अपने भांजे झांग शी मिंग के लिए लड़की ढूंढ रही थीं, लेकिन कई परिवारों ने उन्हें मना कर दिया। मोबाइल पर मिंग की फोटो दिखाते हुए उन्होंने कहा,
मेरे भतीजे के पास अच्छी नौकरी है और वो 5,000 युआन महीना कमाता है, लेकिन लड़की के परिवार कहते हैं उन्हें 10,000 युआन महीना कमाने वाला लड़का चाहिए।
चीन में लड़के को शादी से पहले सिर के ऊपर छत का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन घरों के दाम करोड़ों में है। पार्क में लड़कियों के एक झुंड में से एक ने हंसते हुए मुझे बताया,
चीन की संस्कृति के मुताबिक शादी से पहले लड़कों को ही घर का इंतजाम करना पड़ेगा, हम लड़कियां फर्नीचर खरीद लेती हैं।
उधर ग्रेस का कहना था कि अगर वो भारी कर्ज लेकर अपने भांजे के लिए मकान ले भी लेती हैं तो उसे चुकाने में दशकों लग जाएंगे। ग्रेस को सही मौके और समय का इंतजार है। ग्रेस ने मुझे बताया कि पार्क में जिन लड़कियों के माँ बाप आए हैं उनकी उम्र 35 के आसपास है, उनके पास अच्छी शिक्षा, नौकरियां और तनख्वाहें हैं और मिस्टर राइट चुनने का उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। जब इन लड़कियों की उम्र 40 तक या 40 के पार पहुंच जाएगी तो उन्हें अपनी मांग नीचे लानी पड़ेगी। पार्क में अपनी बेटी की शादी के लिए आई एक महिला ने कहा,
शादी के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आपस में मिल सकते हैं, अगर बात बन जाती है तो अच्छा है।
चीन में पढ़ी लिखी होने के बावजूद अगर लड़की की शादी न हो रही हो तो उसे लेफ्ट ओवर या बचा हुआ तक कहा जाता है और उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। स्थानीय पत्रकार एडरा लियांग ने मुझे बताया,
चीन में शादी करने का ये पारंपरिक तरीका नहीं है। यहाँ आने वाले कई लोग रूढ़िवादी परंपरा से आते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ हैं, उनकी उम्र 35, 40 या उससे ज्यादा है। उनके माँ बाप के लिए यहाँ आने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
हाल ही में सरकार ने दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, यानी अब आप एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं और माना जा रहा है कि इससे शादी की समस्या में सुधार होगा। विनीत खरे, बीबीसी, शंघाई, चीन।
चीन से विनीत खरे की ये विशेष श्रृंखला कहानियां चीन की आप इस पूरे हफ्ते सुनेंगे। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मारियो गोमेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। अब बात टेनिस की। स्पेन के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। सोमवार को जारी हुई ताजा रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी केविन एंडरसन एक स्थान फिसलते हुए छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। खेल समाचारों में आज इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कल शाम जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। अमेरिका ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से हटने के बाद फिर से लगाए प्रतिबंधों को लागू करने जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। सऊदी अरब ने कनाडा के शहर टोरंटो से हवाई संपर्क निलंबित कर दिया है। सऊदी अरब ने यह कदम कनाडा की उस अपील के बाद उठाया है जिसमें रियाद में गिरफ्तार किए गए नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गई थी। निकारागुआ में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख संस्था ने उसके कर्मचारियों को मिल रही जानलेवा धमकियों के चलते काम बंद कर दिया है। उन्हें ये धमकियां सरकार समर्थक लड़ाकों से मिल रही थीं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।